श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। खुश रहता और खुशी बांटता।
निर्मोही के तौर करेंगे,
निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।
ओम शांति। वैश्विक एकता के लिए कर्मों की गुह्य गति इस विषय पर संबोधन करने हेतु हमारे मध्य कमलेश दीदी जी आए हैं। सभी करतल ध्वनि से आप दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। जैसे हमने अभी गीत में सुना, कर्म हम जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे, इसलिए कर्मों पर ध्यान देना है। जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है जीवन में, उसे लेकर हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है, सब अच्छा क्यों हो रहा है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है। जब अचानक ऐसा कुछ हो जाता है, परिस्थिति आ जाती है, तो उन परिस्थितियों को लेकर के मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मन में और भी कई सारे सवाल है। उन सारे सवालों का जवाब स्वयं परमात्मा ने राजयोग के माध्यम से दी है। परमात्मा का दिव्य ज्ञान हम कमलेश दीदी जी के माध्यम से प्राप्त करेंगे कर्मों की गुह्य गति इस विषय पर। मैं कमलेश दीदी का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगी। तो आप 57 ईयर्स से ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। 1982 में आपने अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित किया ईश्वरीय सेवाओं के लिए। आप शिपिंग एंड एविएशन डिपार्टमेंट के, जो हमारा विंग बना हुआ है, उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ ही साथ आप युवा प्रभाग के भी कमिटी मेंबर हैं। देश विदेश में भी आपने सेवाएं दी है। वर्तमान समय आप मुंबई सांताक्रूज में रहते हैं, वहाँ पर सेंटर इंचार्ज के रूप में आप अपनी सेवाएं देते हैं। अभी परमात्मा का दिव्य ज्ञान हम सुनेंगे आदरणीय कमलेश दीदी जी के द्वारा, वैश्विक एकता के लिए कर्मों की गुह्य गति, जो स्वयं भगवान ने बताई है। तो सभी एक हाथ के ताली से हम वेलकम करते हैं दीदी का।
ओम शांति। एक बार हम फिर से बहुत स्नेह से और दिल से कहेंगे ओम शांति। अभी सब ओम शांति हो गए। ओम शांति का अर्थ मालूम चला? अगर इसके अर्थ को जानकर हम उसमें स्थित होकर कर्म करें, तो मैं समझती हूँ हमारे कर्म हमेशा ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। तो आज का ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जैसे गीता बहन सुना रही थी, जब हमारी साथ सब कुछ अच्छा होता है तब हमारे मन में ये सवाल नहीं उठता कि हमारे साथ अच्छा क्यों हो रहा है। लेकिन जब कुछ अप्रिय होता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें हमारा टाइम, हमारी एनर्जी बहुत लगती है, चाहकर भी हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, और जब वो कॉन्टिन्यूअस आता रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तब मन अपने आप से सवाल करता है, या कभी हम दूसरों से सवाल करते हैं, या कभी हम भगवान को कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए इस विषय को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत की एंशंट फिलॉसफी है, बहुत प्राचीन समय से हम सुनते आते हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा कर्म आपने किया है वैसा ही फल आपको मिलेगा। आपको लगता है ये बात सही है? लगता है ये बात सही है? सभी ऐसा ही कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कर्म के महत्व को बताते हुए कहा है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। यानी जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल जरूर मिलेगा। अब ये बात हम कह तो रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम कभी कभी ये देखते हैं कि जो व्यक्ति कुछ गलत तरीके से कुछ कर रहा है, दिखने में ये आता है, लोग उसको मान सम्मान देते हैं, वो बहुत मजा करता हुआ नजर आता है, उसके पास सर्व प्रकार के जो जीवन के अंदर साधन चाहिए वो साधन भी है, सब कुछ है। और जो व्यक्ति सिंसियरली कार्य करता है, ऑनेस्टली काम करता है, और वो व्यक्ति मुश्किल से अपने जीवन को चला पा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा भी होता है ना, ऐसा हम देखते हैं, और बहुतों के मन में ये सवाल उठते हैं। तो आज इन्हीं कुछ सवालों का जवाब आज के ये जो हमारा सेशन है, ये जो विषय है, इसमें आपको मिलेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि कर्म का फल जरूर मिलता है, और वो कैसे मिलता है ये हमको सोचने की जरूरत है। कर्म की गति अति गुह्य है, इसलिए हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो सबसे पहली बात, कर्म क्या है? देखिए, जो भी आत्मा ने शरीर से किया, इस शरीर के द्वारा किया, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा किया, वो कर्म है। खाना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, आंख का झपकना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, ये सभी कर्म है ना। तो जो भी शरीर से आत्मा करती है वो कर्म है। और यहां एक मैं आपको सूक्ष्म बात बताना चाहती हूं, और वो बात ये है कि केवल वाणी से जो निकला और जो हमने एक्शन में लाया, जो हमने एक्शन किया, कर्म किया, केवल वही कर्म नहीं है, लेकिन जो हम मन से सोचते हैं वो भी कर्म है। कभी कभी हमें ये समझ में नहीं आता। देखो, हम कभी कह देते मैंने कुछ कहा थोड़ी ना, मैंने कुछ भी नहीं कहा और मैंने कोई एक्शन भी नहीं लिया, लेकिन मन में हमने सोचा है। हम कहते मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ मैंने किया नहीं, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हम मन में उनके लिए क्या सोचते हैं। सोचना भी कर्म है, और सोचने का जो कर्म है वो वाइब्रेशन के रूप में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। इसीलिए कर्मों पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? क्या हमें मालूम है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुख्य रूप से हमारे तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म जिनको हम सुकर्म कहते हैं, अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, और एक कर्म वो है जिनको हम कहते हैं विकर्म, और तीसरे कर्म वो होते हैं जिनको हम कहते हैं अकर्म। इन तीनों को समझने की आवश्यकता है। जो कर्म वैल्यू बेस्ड हैं, जिनका आधार गुण है, वर्चुज है, वो कर्म हमारी सुकर्म के खाते में जाते हैं। अभी आप गीत सुन रहे थे। अगर हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में मधुरता है, विनम्रता है, हमारे वाणी में, हमारे व्यवहार में सरलता है, जहां झुकना होता है हमें झुकना आता है, अगर ऐसे हमारे कर्म इस उनका आधार ऐसे गुण हैं, ऐसी वैल्यूज हैं, हम किसी के साथ बात करते हैं, हम किसी से व्यवहार करते हैं, तो हमारे व्यवहार में निर्मलता है, छल कपट नहीं है, हमारे व्यवहार में प्रामाणिकता है, ये कर्म कौन से होंगे? ये सुकर्म होंगे। और यही कर्म जब हम उस अपनी मूल स्थिति में रहकर करते हैं, और यही कर्म जब हम उस परम शक्ति परमात्मा की याद में रहकर करते हैं, तो ये कर्म हमारे और हायर हो जाते हैं, ये श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। जो कर्म हम परमात्मा की आज्ञा के प्रमाण करते हैं, जो कर्म हम परमात्मा की याद में रहकर करते हैं, वो कर्म हमारी श्रेष्ठ कर्म की कैटेगरी में आते हैं। और विकर्म किसको कहा जाता है? विकर्म जिनका आधार पांच विकार हैं मुख्य रूप से, और वो पांच विकार कौन से हैं आपको मालूम है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर हमारे कर्मों का आधार पांच विकार है, देखिए मेरे मन में एक विचार आया, किसी ने मेरी इंसल्ट की, पब्लिक के बीच में उसने मेरी इंसल्ट की, 10 लोगों के बीच में की, और जबकि मैं कहीं भी गलत नहीं हूं। अब उस समय तो मैं चुप रहती हूं, मैं बोलती कुछ नहीं, लेकिन मेरे मन में संकल्प आता है, विचार आता है, समय आने दो, मैं भी इसको दिखाऊंगी। अब ये किस खाते में गया? आपने किया नहीं है अभी तक, लेकिन आपने मन में सोचा है, मेरे मन में किसी के प्रति आवेश आना, बदले की भावना, या हम जैसे क्रोध करते हैं, तो ये जो हमारे कर्म होते हैं, इनसे प्रभावित होकर या विकारों के वशीभूत होकर जो हम कर्म करते हैं, उनसे हमारे विकर्म का खाता बनता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नेगेटिव अकाउंट बनता है, या हम उसको और गहराई में सोचें तो हम कह सकते हैं इससे हमारे पाप कर्म का खाता बनता है, इसलिए इनको विकर्म कहा जाता है। और जो हम परमात्मा की याद में रहकर कर्म करते हैं, परमात्मा की आज्ञा के प्रमाण कर्तव्य करते हैं, उनसे मेरा पॉजिटिव अकाउंट बनता है, उससे मेरा पुण्य का खाता जमा होता है। तो कौन से कर्म हमें करने चाहिए, आप सोचिए, कैसे कर्म हम कैसे कर्म करना चाहेंगे, आप बताओ कैसे कर्म करना चाहेंगे, पुण्य का खाता जमा करना चाहेंगे या पाप का? पुण्य का जमा करना चाहेंगे ना। हम आम तौर से क्या सोचते हैं, जो हम दान पुण्य करते हैं, जो चैरिटी करते हैं, उससे मेरे पुण्य का खाता जमा होता है। बात तो ठीक है, आपने चैरिटी की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी वो दान पुण्य का, जो दान पुण्य हम करते हैं ना, कभी कभी अनजाने में उससे मेरा नेगेटिव अकाउंट भी बन सकता है। कैसे? क्योंकि जिसको मैंने दिया उसने उसका उपयोग कहाँ किया? उसके कारण
पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज, काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज, योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार,
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा।
तो हम आपको सुना रहे थे कि तीन प्रकार के कर्म, एक है सुकर्म, एक है विकर्म, एक पॉजिटिव अकाउंट बनाने वाले और एक नेगेटिव अकाउंट बनाने वाले। तो ये सोच लीजिए कि जो हम जैसा कर्म करेंगे मुझे वैसा फल जरूर मिलेगा, उससे कोई छूटा नहीं है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने आंगन में एक पौधा लगा रहा था, और वो पौधा था, वो था अनार का पौधा। तो उसके सामने वाले व्यक्ति ने उसको देख के पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं पौधा लगा रहा हूं। तो उसने कहा, तुम क्या समझते हो कि जब तक इस पेड़ के अंदर फल आएंगे तब तक तुम जियोगे? उसने कहा, नहीं, यहां पहले एक पेड़ था जिसका फल मैंने खाया, और अब मैं पौधा लगा रहा हूं जो जो आने वाले होगा वो इसका फल खाएगा। तो एक है पौधा लगाना, वो बीज बोना, और एक है फल खाना। कर्म दोनों है, राइट? एक है लगे हुए फल को खाना और एक है बीज बोना। कौन सा कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है? बीज बोना। क्योंकि जब बीज बोएंगे उससे शायद 100 लोग भी खाएंगे, कई सालों तक खाएंगे, तो ये कौन सा हो गया? श्रेष्ठ कर्म हो गया, राइट? और जो फल खाना है, फल खाया और पूरा हो गया, तो ये कैसा कर्म है? ये है अकर्म। क्योंकि फल था वो मैंने खाया, उससे ना मेरा पुण्य का खाता बना और ना ही मेरा पाप का खाता बना। तो हमें कौन से कर्म करने हैं? तो मैं आज आपको एक सिद्धांत कर्मों का बताना चाहती हूं। जैसा कर्म हम अभी करेंगे वैसा ही हम अपना भाग्य लिखेंगे। याद रखिए, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं, ये कर्म का सिद्धांत है। हम कभी कभी क्या करते हैं? अपने भाग्य को कूसते हैं। जब हम वो सिचुएशन देखते ना, हमारे पास एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी बात आती रहती है, कभी अपने भाग्य को कूसेंगे, कभी परमात्मा को दोषी ठहराएंगे, कभी अपने परिवार वालों को कहेंगे, कभी कहेंगे हमारे परिवार वालों ने हमको ऐसी शिक्षा ही नहीं दी, हमको ऐसा ब्रॉटअप ही नहीं दिया, कभी उनको कहेंगे। किसी ना किसी को दोषी ठहराते हैं, लेकिन दोष किसी का नहीं होता है। हर व्यक्ति ने अपना भाग्य खुद लिखा है और वो कर्मों के आधार से लिखा है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। आप देखिए, कुछ बीज ऐसे होते हैं, कुछ पौधे जब हम लगाते हैं तो वो एक साल में 2 बार फल देते हैं, ठीक है? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक साल में एक ही बार फल देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 2 साल में एक बार देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कई वर्षों के बाद देते हैं। होता है ना ऐसे? जिनका आप में से साइंस का बैकग्राउंड होगा उनको मालूम होगा कि जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, स्पेशली जो केमिस्ट्री की लैब होती है, वहां पर क्या होता है, जब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रयोग करते हैं, कई ऐसी गैसेस होती हैं, कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर रिएक्शन तुरंत होता है, और कईयों में क्या होता है, रिएक्शन करने में थोड़ा समय लगता है, और कईयों में रिएक्शन होने के लिए कुछ दिन लगते हैं, और कईयों में रिएक्शन करने के लिए कुछ उसके अंदर डाला जाता है जिसको कैटलिस्ट कहते हैं। इसी प्रकार ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस समय मैंने कर्म किया मुझे उसका फल उसी समय मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। वो कर्म का फल मुझे कब मिलेगा, जब वो पक जाएगा, उसके बिना वो फल नहीं मिलता। तो कोई कोई कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें तुरंत मिलता है, और कोई कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल जो है हमें बाद में मिलता है, और हो सकता है कोई कर्मों का फल हमें 2-3 जन्मों के बाद मिले, ये हमें मालूम नहीं है। क्योंकि जब तक मैंने वो अपने कर्मों का खाता जैसा बनाया हुआ है वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक उसका दूसरा फल मुझे मिलता नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। भारत में पहले आम तौर से जब अनाज स्टोर करते थे तो बड़े बड़े वो ड्रम्स जो होते ना, बड़े बड़े वो बनाए जाते थे, और अनाज निकालने के लिए नीचे एक दरवाजा होता था, और वो दरवाजा खोल के उसमें से वो अनाज निकाला जाता था। तो जब तक, अब सोचिए, मैंने एक साल उसके अंदर मैंने एक प्रकार का अनाज भरा, समझो मैंने चावल भरा, अब नेक्स्ट सीजन में मैंने उसके अंदर गेहूं डाला, लेकिन जब तक वो राइस का, चावल का स्टॉक खत्म नहीं होगा तब तक उसमें से गेहूं बाहर कैसे आएगा। हम ये कह देते हैं कि हमारे पड़ोस में रहने वाले वो तो कभी कभी ऐसा करते हैं जो बहुत अप्रिय है, फिर भी वो मजे में रहते हैं, उनके पास सब कुछ है, और हम जबकि सब कुछ अच्छा करते हैं फिर भी हमें फेस करना पड़ता है, हमको सुनना पड़ता है। लेकिन इसका कारण यही होता है कि जो हमने कर्म कभी भी किया जाने अनजाने, उस कर्म का फल जब तक पूरा नहीं हुआ तो दूसरे कर्म का फल वो मिलता नहीं है। तो याद रखिए कि जो मैंने कर्म किया वो कर्म का फल मुझे ही मिलना है, वो कभी रुक नहीं सकता है। कोई कहे मैं उसको नलीफाई कर दूं, मान लीजिए मैं पश्चाताप करके उसको नलीफाई कर दूं, पश्चाताप करके भी वो नलीफाई नहीं होता है। जो फल मैंने संचित कर लिया, जो मैंने फल बना लिया, वो जरूर मुझे ही, मेरे पास ही किसी ना किसी रूप में आएगा। इसलिए हम ये सुनते आते हैं कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप करोगे, वो लौट कर कभी ना कभी वो आपके पास ही आएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात बताई जाती है कि अगर आप अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छे थॉट्स क्रिएट करना शुरू करो दूसरों के लिए, क्योंकि आप अच्छा चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप खुशी के थॉट्स क्रिएट करने शुरू करो, और ये थॉट्स, खुशी के वाइब्रेशंस, ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और फिर कभी ना कभी वो लौट के हमारे पास आते हैं। तो क्रिएटर कौन हुआ, आप सोचिए अपने भाग्य का क्रिएटर कौन हुआ, वो हम ही तो हो गए ना। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कर्म हमेशा श्रेष्ठ हो। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, कर्मों का फल भोगने के लिए हमें कोई दूसरे पशु प्राणी की योनि में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जो कर्म करता है उसका जो भोगना है, उसका जो परिणाम है, वो मनुष्य बनकर ही वो भोगता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरी स्पीसीज में चला जाएगा और उसके बाद वो भोगेगा, ऐसा नहीं है। हम आज आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको मनुष्य जन्म लेकर ही वो भोगना भोगती पड़ती है। मनुष्य आत्मा कभी भी किसी दूसरी स्पीसीज में जाती ही नहीं है। मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही तन लेती है। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कई व्यक्ति, जन्म तो मनुष्य का ही है लेकिन डिसेबल्ड है, उसने तो कोई कर्म किया ही नहीं है, अभी तो जन्म ही लिया है लेकिन फिर भी डिसेबल्ड है, क्यों? कोई मनुष्य जन्म से ही ब्लाइंड है, क्यों? किसी मनुष्य को जन्म से ही कोई ऐसी डिजीज है, ऐसी बीमारी है, कहां से आई, कहां से लेकर आया वो? जो उसने कर्म किए थे पिछले और वो जो कर्म संस्कार के रूप में ले गया, उसके बाद वापस उसका रिजल्ट उसको मिलता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों पर अटेंशन देने की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो मैं आपको कुछ कर्म के जैसे एक सिद्धांत मैंने आपको बताया कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। दूसरी बात, कुछ भी कभी भी अचानक नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो सब कुछ हमने ही किया हुआ होता है, हमारे साथ ही होता है। देखिए, साइंस का एक लॉ है, कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी, कहते हैं नो कॉज इज विदाउट इफेक्ट एंड नो इफेक्ट इज विदाउट कॉज। इसी प्रकार संसार में जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है या संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसका इफेक्ट जो है वो हम पर भी जरूर होता है, और वो दो तरीके से होता है, एक माइक्रो लेवल पर और एक मैक्रो लेवल पर, एक छोटे रूप में और एक बड़े रूप के अंदर। आज जो संसार के अंदर जो भी हम परिस्थितियां जो निर्मित हुई हैं उसका कारण कौन है? उसका कारण हम हमेशा दूसरों को कह देते हैं, कभी कह देते हैं हमारे नियम ऐसे हैं, कभी हम कह देंगे जो अथॉरिटीज हैं नियम बनाने वाले वो ऐसे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, लेकिन उसका कारण हम सब मनुष्य हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं उसका प्रभाव इस सारे संसार के अंदर पड़ता ही पड़ता है। और दूसरा, उसका इफेक्ट हमारे आसपास जो रहने वाले हैं और हमारे ऊपर। तो कभी ये नहीं सोचना कि कुछ अचानक हो जाता है, अचानक कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो किसी ना किसी कारण से होता है। अब ये प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, आप सोचिए क्या ये अचानक हो जाते हैं? अचानक नहीं होते हैं, ये हमारे ही कुछ कर्मों के परिणाम होते हैं। नॉट नेसेसरी कि वो मैंने पर्टिकुलरली किया है, लेकिन हम मनुष्यों के द्वारा किए गए ही कुछ कर्म होते हैं जिसका वो रिजल्ट होता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों पर अटेंशन जरूर देना है। तीसरा सिद्धांत आप याद रखिए, मैं अपनी स्थिति का खुद जिम्मेवार हूं। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम टुडे। हम किसी भी व्यक्ति को इसका जवाबदार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि मेरे भाग्य के निर्माण में कोई भी इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। इसीलिए मुझे अपने कर्मों को बहुत ध्यान से करना है। तो कैसे हम कर्म करें जो हमें कर्मों का फल अच्छा मिले, हमें पुण्य का खाता, हमारा पुण्य का खाता बने? इसमें बहुत सी बातें कही जाती हैं। सबसे पहली बात कि जब हम कर्म करते हैं तो उस समय हमारी इंटेंशन क्या होती है, हम किस एटीट्यूड से, किस मोटिव को लेकर, किस वृत्ति से वो कर्म करते हैं, उसके पीछे स्वार्थ समाया हुआ है या हम रियली किसी का भला करना चाहते हैं, हमको ये देखना है। दूसरी बात, जो मैंने कर्म किया वो किस क्वालिटी का कर्म है, उसकी जो क्वालिटी है उस कर्म की वो किस प्रकार की है, अच्छा है, या उसकी क्वालिटी जो है निम्न कोटि की है, ये भी मुझे देखना है। तीसरा, वो कर्म मैंने किस समय पर किया है, क्या वो राइट समय था वो कर्म करने का। और चौथा, उस समय परिस्थितियां और वातावरण कैसा था। इन सब से हम, इन सब का इफेक्ट हमारे कर्मों पर पड़ता है, कर्मों के फल पर पड़ता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा शिव ने हमें बहुत अच्छा बताया है कि जब अगर हम अपना कर्मों का, पुण्य कर्मों का खाता बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। कुछ एक बातें ऐसी हैं जिनको हम यदि याद रखें तो हम अपने पुण्य का खाता बना सकते हैं और जमा कर सकते हैं। मैं इस पर आपको कुछ एक दो बातें सुनाना चाहूंगी। देखिए, कई कर्म ऐसे होते हैं जिससे हमारा पॉजिटिव अकाउंट बहुत अच्छा होता है, कर्म छोटा सा होता है लेकिन उसका जो पुण्य का खाता है वो बहुत बड़ा बनता है। ये हमारी सोच के ऊपर है। जैसे कहते हैं कि एक बार दो मित्र थे और वो जो दोनों मित्र हैं वो इकट्ठे कहीं जाते थे, तो एक था डॉक्टर और एक जो था उसमें था व्यापारी। तो एक कोई महात्मा जी सत्संग करने के लिए उन दिनों उस स्थान पर आए हुए थे, तो जो व्यापारी था और जो डॉक्टर दोस्त था उन्होंने सोचा कि हम आज महात्मा जी का सत्संग सुनने चाहते हैं। तो लेकिन हुआ क्या कि जब वो दोनों जा रहे थे, डॉक्टर को याद आया और उसने कहा कि मैं सत्संग सुनने नहीं जाऊंगा। तो व्यापारी ने कहा ठीक है, मैं तो सत्संग सुनने जाता हूं। और जो डॉक्टर जो है वो अपने क्लिनिक पर चला गया। अब रास्ते में जब वो जा रहे थे, तो रास्ते में जाते हुए जो सत्संग सुनने जा रहा था, रास्ते में जाते जाते उसको एक कांटा चुभ गया। और जो अपना बिजनेस करने जा रहा था डॉक्टर, उसको रास्ते में एक 10 रुपए का नोट मिला। अब कहने में क्या था, एक अपना काम धंधा करने जा रहा था और एक जो है वो सत्संग सुनने जा रहा था। अब अगले दिन दोनों मिले, दोनों ने अपनी अपनी बात कही कि उसने कहा मैं तो सत्संग सुनने जा रहा था, अच्छा काम करने जा रहा था, तो फिर मुझे कांटा क्यों लगा। और उसने कहा मैं तो अपना काम करने जा रहा था तो मुझे वो 10 रुपया क्यों मिला। उन्होंने कहा ठीक है, उन्हीं महात्मा जी के पास चलते हैं, उनको जाकर पूछते हैं ये क्या है। तो उन्होंने जाके ये सवाल पूछा, तो महात्मा जी ने कहा कि तुम एक अच्छा काम करने जा रहे थे और अच्छा काम जब करने जा रहे थे, तुम्हारा कोई पिछले जन्मों का कोई ऐसा कर्म था जिसका फल तुम्हें ज्यादा मिलना था, लेकिन वो रिड्यूस होके वो एक कांटे के रूप में बदल गया। फल उसका था सूली के समान, लेकिन वो रिड्यूस होके वो कांटे में बदल गया। और जो तुम अपना काम करने जा रहे थे, तुम्हारा कोई पिछला कर्म बहुत अच्छा था, लेकिन उसका फल रिड्यूस होके वो 10 रुपए में बदल गया। ये कहानी है। ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं जो कर्मों की गति को समझने के लिए बतलाए जाते हैं। और ऐसी एक और कहानी मुझे याद आती है, आप इससे समझने की कोशिश कीजिएगा कि कर्मों की गति कितनी गुह्य है। और वो कहानी क्या है, कहते दो दोस्त थे किसी गांव में रहने वाले, और उन दोनों ने सोचा कि शहर में जाया जाए और कुछ पैसा कमा कर आए। शहर में गए और वहां जाकर उनको आया कि हम विदेश में जाके अभी कुछ पैसा कमा कर आए, और दोनों विदेश में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहे, वहां रह के वर्ष रह के बहुत पैसा कमाया। पैसा कमा के वो लौटकर जब आ रहे थे तो उनकी जर्नी शिप से जर्नी थी। तो एक के मन में थोड़ा सा संकल्प आया, पाप का संकल्प आया। क्या संकल्प आया, हम दोनों ने पैसा तो खूब कमाया है और मेरे पास भी बहुत है, इसके पास भी बहुत है, अगर मैं इसका धन ले लूं तो मेरे पास तो डबल हो जाएगा। तो वो जो उसके मन में कलुषित विचार आया, ये जो विकृत विचार उसके मन के अंदर आया, तो वो दोनों हंसी हंसी में, तो वो दोनों ऊपर गए शिप में, होता है ना किनारा, और उसने वहां जाकर हंसते हंसते उसने अपने उस दोस्त को धक्का दे दिया समुद्र में, और वो दोस्त गिर गया। और आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। और आखिर वो जो एक व्यक्ति जिसने धक्का दिया था वो वापस अपने घर गांव में आ गया। अब उसके पास तो पैसा बहुत था, उसने बहुत कुछ अपना बनाया, सब कुछ अच्छा किया। अब जो उसका दोस्त था, जब उसके घर परिवार वालों को मालूम पड़ा तो वो उसके पास पूछने गए कि क्या हुआ उस दोस्त का, वो क्यों नहीं आया। उसने कहा कि उसने मेहनत तो वहां बहुत की थी लेकिन वो बहुत पैसा नहीं कमा पाया, इसलिए उसको अंदर ही अंदर बहुत ग्लानी का भाव उत्पन्न हो रहा था और उसने जो है समुद्र में छलांग लगा दी। तो घर वालों ने कहा ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति था, जो दोस्त जिसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था, तो उसने एक मुनीम जी को रखा था, क्योंकि पैसा तो बहुत सारा हो गया, बिजनेस बढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया। मुनीम जी के मन में आता था कि कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। खैर उस व्यक्ति की शादी हुई और उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, सब कुछ हुआ, और बच्चे को बहुत पाला पोसा, और एक दिन जो बच्चा था वो अचानक बहुत बीमार हो गया। और जब वो बीमार हो गया बच्चा, बहुत इलाज कराया गया, लगभग वो 24 साल 25 साल का जब हो गया, अब उसके जीने की बिल्कुल भी आशा नहीं थी, और वो जिस बिल्कुल जैसे कि डेथ बेड पर था। और वो जो व्यक्ति था वो अंदर से बड़ा दुखी कि मेरे पास इतना सारा पैसा है, सब कुछ है, और बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। और जब वो जैसे बिल्कुल डेथ बेड पर था तो बच्चा जो है अपने पिता को देखकर हंसता है, और हंसकर क्या कहता है, तुम भूल गए मैं वही तुम्हारा दोस्त हूं जो पिछले जन्म में तुम्हारा दोस्त था, और तुमने मुझे मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था, और मैं जो है वही जो तुम्हारे ऊपर मेरा कर्ज चढ़ा है, मैं सूद सहित वो कर्ज जो है चुकाकर वापस जा रहा हूं। मेरा जो तुम्हारा कर्जा था वो पूरा हुआ, सूद सहित मैंने ले लिया और अब मैं जा रहा हूं। और ये कहकर वो चला गया। अब इन दो स्टोरी से आप क्या समझते हैं कि हम कभी जाने अनजाने सोच लेते हैं इनको क्या मालूम पड़ेगा, हम किसी को दुख दे देते हैं, हम किसी को नाराज कर देते हैं, हम कोई किसी भी विकार के वशीभूत होकर कोई गलत कार्य कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कर्म का फल तो मुझे ही चुकाना पड़ेगा। इसीलिए जो हमने आपको कहा पहले ही, हमें परमात्मा की आज्ञा के प्रमाण कर्म करने हैं। और परमात्मा की आज्ञा क्या है? जब हम स्वयं को उस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म करना शुरू करते हैं, तब आत्मा की स्थिति वो होती है कि उसके मन में कोई ऐसा विचार आता ही नहीं है जो गलत कर्म हो। इसीलिए सोल कॉन्शियस का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, आत्मिक स्थिति, क्योंकि आत्मा के गुण क्या हैं आपको मालूम है। जब उस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे तो हमारा कोई भी कर्म जो है वो गलत नहीं होगा। और इसके भी अबव, जब हम परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जब हम उसकी याद में रहकर कर्म करते हैं, तो भी कोई कर्म गलत नहीं हो सकता, लेकिन याद सही होनी चाहिए, उससे कनेक्शन मेरा पूरा जुटना चाहिए। वो सकारात्मक एनर्जी जो हमें परमात्मा से प्राप्त होती है, उसके फल स्वरूप हमारे मन की विचारधाराएं परिवर्तित होना शुरू होती हैं, जिसके फल स्वरूप हम अच्छे कर्म करने के लिए स्वयं ही स्वयं को प्रेरित करते हैं। तो इसीलिए ये जो कर्मों की गति है, ये जानकर, कर्मों की गति को समझकर कि जो मैंने कर्म किया है, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, कोई भी कर्म के फल से छूटा नहीं है। कोई कहे मैं छूट जाऊं, लेकिन ये हो नहीं सकता है। लेकिन एक विशेष बात इस समय की है, मैं समझती हूं आप सभी को काल चक्र का रहस्य बताया गया होगा, जिसमें आपको पांचवें युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और पांचवा युग कौन सा है? संगम युग। और वो संगम युग कौन सा युग है? कलयुग का अंतिम चरण और सतयुग का प्रारंभ, यानी ये जो दुनिया जो अभी चल रही है उसका बिल्कुल अंतिम समय और आने वाली नई दुनिया का प्रारंभ, उसका ये समय संगम युग है। इस संगम युग का एक बहुत बड़ा महत्व परमात्मा ने हमें बताया है, और अच्छे कर्म करने के लिए कुछ बातें हमें परमात्मा ने बताई हैं। देखिए, अगर हमें ये ध्यान रहे कि न दुख देना है ना दुख लेना है, सुख देना है और सुख लेना है, एक बात अगर हम ये याद रखें। अगर आप सोचिए, मुझे ये याद रहे कि मुझे दुख देना नहीं है, तो क्या होगा? मेरी सोच कैसी होगी, मेरी वाणी कैसी होगी? जब सोच और वाणी अच्छी है तो मेरे कर्म कैसे होंगे? सिंपल, ना दुख देना है ना दुख लेना है। मैं ऐसा ही एक और परमात्मा का महावाक्य बताती हूं, बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। ये कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का परमात्मा के ये महावाक्य है, बदला ना लो, बदल के दिखाओ। किसी ने मेरे साथ कितना भी बुरा किया है, लेकिन हमने आपको क्या बोला था? कुछ भी अचानक नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म का हो सकता है वो मुझे फल मिला है, फिनिश हो गया। उसने मुझे खराब किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ मेरी उन्नति में विघ्न डाला, वो मेरे रास्ते में सफलता का रोड़ा बना, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे उसने किया वो मेरा भाग्य था, उसका कर्म था, और मेरा भाग्य था, समझा आपने? उसका कर्म और मेरा भाग्य अब हो गया ना, लेकिन मुझे अभी क्या करना है? मुझे अच्छा भाग्य बनाना है। वो तो जो हो गया सो हो गया, अब उसके लिए तीसरी बात परमात्मा ने क्या कहा है, कभी भी पास्ट को नहीं सोचो, जो बीत गई सो बीत गई, उसको फुल स्टॉप लगा दो। आपको साइकिल के लेसन में ये बताया गया होगा ना, बीत गया ना, समझो इसी जन्म में मुझसे कोई ऐसा बुरा कर्म हो गया था, आज मुझे रियलाइज होता है। समझो आप यहां पर आए हैं, आप ये सब ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, आपको चलते फिरते रियलाइज होता है कि मेरे से फालतू ही ऐसा कोई कर्म हो गया था, आप पश्चाताप करना शुरू करते हैं, नो नीड टू रिपेंट, हो गया ना, वो पास्ट हो गया, वो हो गया था। अब वो समय वापस आ सकता है? वापस आ सकता है बताइए, आ सकता है? नहीं आ सकता है ना वापस। तो मुझे इस जन्म में भी यदि मुझसे कोई ऐसे नेगेटिव कर्म हो चुके हैं, हो गए हैं, और मुझे याद आते हैं बीच बीच में, तो मुझे उनको याद करके अपना वर्तमान खराब नहीं करना है, उनको फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट स्टेप, ये संगम युग पर, क्योंकि हमें परमात्मा मिला और परमात्मा को कहते हैं प्यूरिफायर, है ना? परमात्मा कौन है? पतित पावन, वो सबको पावन बनाने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है। तो अगर समझो ऐसे कोई कर्म वर्तमान में मुझे अगर बार बार याद आते हैं, सताते हैं मुझे बार बार, तो हमें परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ये बताया है कि आप परमात्मा को सच्चा सच्चा लिख कर दे दो, सुना दो सच्चे दिल से। हम लोग कभी कभी ये पत्र लिखवाते हैं, लेटर टू गॉड। समझो कोई ऐसी बातें हो गई, हमसे हो गई, उस समय में पता नहीं था, अनजाने में हो गई थी, किसी के प्रभाव में आके हमने कर ली थी, किसी संस्कार के वशीभूत होके कर ली थी, तो हमें अभी परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अगर आप सच सच उसको परमात्मा को सुना देंगे तो क्या होगा, तो आपका आधा माफ हो जाएगा, पूरा माफ नहीं होगा, आधा माफ होगा। और बाकी आधे के लिए क्या करना पड़ेगा? बाकी आधे के लिए परमात्मा से योग लगाकर हमें वो जो मैंने अपना संचित कर्म किया, जो मैंने अपना अकाउंट बनाया, उसे मुझे परमात्मा की याद के द्वारा भस्म करना पड़ेगा। तो पूरी साइकिल में ये वो टाइम है, कौन सा टाइम है, जब हम अपने पूर्व किए गए नेगेटिव कर्मों का जो मेरा हिसाब किताब बना, जो अकाउंट बना, उसको मैं नलीफाई कर सकती हूं, और साइमल्टेनियसली मैं श्रेष्ठ कर्म करके अपना पॉजिटिव अकाउंट बना सकती हूं। ये इस समय की विशेषता है, जो सारी साइकिल में सारे कल्प में नहीं होती है। तो अब आप सोच लीजिए, ये समय वो है जब हम श्रेष्ठ कर्मों के बीज बो सकते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोकर हम अपना आगे का जो आने वाला भविष्य है, उस भविष्य का हम निर्माण कर सकते हैं, अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो हम क्या करना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं जो बीज बोने का जब समय होता है, तभी बो लिया जाए तो फल उसका अच्छा मिलता है। तो आज हम आपको ये भी एक खुशखबरी की बात है, जैसे हमने कहा ना कि मनुष्य का जन्म ही लेकर जो उसको अच्छा फल भोगना है, बुरा फल भोगना है, वो सब मनुष्य जन्म लेकर ही करता है। वो कोई जानवर में या कोई पंछी में जाकर नहीं होता है। इसी प्रकार ये जो संगम युग का समय है, जबकि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हुए हैं और एक मानव के माध्यम द्वारा, जिन्हें प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, उस तन के द्वारा जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है, तो इस समय की बलिहारी है कि जो हमने पिछले जन्मों के अंदर, जो भी हमने ऐसे पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म कर लिए होंगे जाने अनजाने, जिसके कारण हमारे सामने कई प्रकार के हिसाब किताब आ रहे हैं, उनको हम योग के द्वारा खत्म भी कर सकते हैं और श्रेष्ठ कर्म करके हम अपने आने वाले नए भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। तो ये निर्माण करना चाहेंगे ना, देखिए आप जाते हैं ज्योतिषियों के पास, है ना, कहते ना हमारा हाथ देख दो हमारा भविष्य कैसा है, लेकिन वो तो पता नहीं कितना सही निकलता है कितना नहीं। आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं, कहते हैं शायद हमारे घर में बहुत दुख है, पता नहीं शायद वास्तु का दोष होगा, ऐसा भी कहते हैं कोई, अपने स्टार्स के लिए कहते हैं पता नहीं हमारे ग्रह ऐसे होंगे, वो ग्रहों को जरा शांत कर दो। लेकिन सबसे अच्छी विधि है योग, सर्व सिद्धियों की विधि है जो राजयोग परमात्मा ने सिखाया है। यही राजयोग कर्मों को श्रेष्ठ करने की विधि है। इसलिए हमने आपको कहा यदि परमात्मा को याद करके हम कर्म करेंगे तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। देन एक और बात एडिशन, जैसे हमने आपको दो तीन बातें बताई ना, न दुख देना है न दुख लेना है, सुख देना है सुख लेना है, बदला न लो बदल कर दिखाओ। इसी प्रकार याद रखना जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। कहीं भी हो, आप ऑफिस में हैं, सरकारी दफ्तर में हैं, प्राइवेट में हैं, अपना बिजनेस करते हैं, आप कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं, आप घर परिवारों में हैं, रिलेशंस के बीच में हैं, मित्रों संबंधियों के बीच में हैं, पास पड़ोस के बीच में हैं, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे, ये याद रखिएगा। उससे क्या होगा, क्योंकि हमारे कर्मों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है ना, और परमात्मा ने इससे भी सूक्ष्म बात हमें बताई है, जैसी हमारी सोच होगी वैसा हमारा वातावरण बनेगा, जैसी हमारी सोच होगी वैसे हमारा वातावरण बनेगा। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हम अपने कर्मों को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं, और मैं समझती हूं अगर हमें खुश रहना है और कुछ नहीं, तो अब जो हो गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते। अगर अभी से हम संकल्प कर लें कि मुझे हरेक को सुख ही देना है, चाहे मेरे पास कितने भी तूफान क्यों ना आए, मुझे खुश ही रहना है ना, मुझे अच्छा ही काम करना है, मुझे नेक काम ही करना है, मुझे परमात्मा की याद में रह के ही कर्म करना है, तो क्या होगा, हमारा अकाउंट बनता चला जाएगा। राइट, ठीक है ये बात, ठीक है। तो हम कैसे कर्म करना चाहेंगे, ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है सबको सुखी दें, पॉसिबल है। देखो हमारी माताएं सारी ऐसे से गर्दन हिला रही हैं, आप भाई लोग क्या कहते हैं, हो सकता है, हो सकता है, अच्छा अच्छी बात है। यहां तो हो सकता है, घर में जाके हो सकता है, घर में जाके हो सकता है, हो सकता है, अच्छा है। कैसे होता है वो, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, जब हम, क्योंकि यहां तो हमें सब कुछ गुड 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 दिखाई देता है, लेकिन यहां से जाने के बाद जब हम ज्ञान श्रवण करते हैं, ज्ञान श्रवण किया, रोज सुनते रहते, रोज कुछ ना कुछ मन में बुद्धि में जाता रहता है, रोज थोड़ा समय निकाल के हम परमात्मा से योग लगाते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, और वो शक्ति हमारे रिएक्शंस को, हमारे एक्शंस को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करती है। आप करके देखिएगा, सामने वाला कुछ कह रहा है, उसने बिल्कुल अच्छा नहीं कहा, आप यहां से गए, सामने वाले ने कुछ कह दिया, आपको इमीडिएटली याद आएगा और आप बोलते बोलते एकदम चुप, अंदर आया मन में लेकिन चुप, ये कंट्रोलिंग पावर आती है। आप करके देखना इसको। इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि यदि हम अपने अच्छे कर्मों का खाता बनाना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में हम ये नहीं बताते हैं इस कर्म का ये फल है, इस कर्म का ये फल है, आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और हम समझते हैं इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने हर कर्म को एनालाइज करना शुरू कर देंगे ना, तो क्या होगा, हम हमेशा दुखी दुखी और दुखी ही रहेंगे। मैंने शायद इसको पिछले जन्म में सताया होगा इसलिए अभी ये मुझे दुख दे रहा है। नो नीड टू थिंक दैट, ये भी सही नहीं है। हर कर्म को एनालाइज करना ये भी सही नहीं है। या किसी को ये कह देना तुम खराब कर रहे हो ना, तुमको खराब ही मिलने वाला है, ये भी नहीं कहना है। ये सोचना भी नहीं है कि वहां सिखाया था ना जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, अब ये बुरा कर रहा है ना ये बुरा ही पाएगा, ये भी सोचना नहीं है मुझे। ये भी मेरा अकाउंट बना, राइट? तो इसलिए मुझे क्या करना है, अभी जो समय मेरे पास है, मेरे जीवन का जो समय मेरे पास है, उस समय को मुझे सफल करना है परमात्मा की याद से। और अगर आप ये योग यहां से अच्छी तरह से सीख कर गए, आपको मेडिटेशन का लेसन कराया होगा, योग की विधि क्या है वो सिखाया गया होगा, और वो योग की विधि यदि आपने सीख ली है, तो आप ये पक्का करो अपने आप से कि मुझे अपने दिन की शुरुआत और दिन की समाप्ति उस योग के द्वारा ही करनी है। और जितनी जितनी आप योग की शक्ति जमा करते जाएंगे, उतने उतने आपके कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे, और जितने श्रेष्ठ कर्म होंगे उतना आपका पॉजिटिव अकाउंट बनेगा, और जितना पॉजिटिव अकाउंट आपका बनता जाएगा, याद के द्वारा एक तरफ आपका नेगेटिव अकाउंट खत्म होगा और दूसरी ओर पॉजिटिव एक्शंस के द्वारा आपका पॉजिटिव अकाउंट बनेगा, और जो आप जीवन के अंदर सुख शांति आनंद चाहते हो, वो सुख शांति आनंद खुशी वो आपको प्राप्त होगी। लेकिन याद रखिए, पहल मुझे करनी होगी। ये पहल कहां से होगी, शुरुआत कहां से होगी, प्रारंभ कहां से होगा, वो मेरे से मुझे करना होगा। हम ये एक्सपेक्ट करें कि दूसरा करे मेरे साथ ऐसा, ये एक्सपेक्टेशन नहीं। लेकिन जो व्यक्ति जैसा है उसको स्वीकार करके मुझे अपने को, मुझे अपने से श्रेष्ठ कर्मों का खाता प्रारंभ करना है, मुझे अपने से ये कार्य करना है, ये हम यहां से पक्का करके जाएंगे, तो हम डेफिनेटली अपने कर्मों का ऐसा खाता बनाएंगे जिससे मेरा वर्तमान भी अच्छा होगा और जिससे मेरा भविष्य भी अच्छा होगा। यूं तो आप देखिए, पास्ट अब हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, और जो फ्यूचर है, आने वाला है, उसको हम अभी ऐसे जानते नहीं हैं, लेकिन हमको इतना जरूर मालूम है कि जो मैं प्रेजेंट में कर रही हूं, वर्तमान में मैं कर रही हूं, उस वर्तमान का फल मेरा फ्यूचर है। जैसे मेरे पास्ट का फल मेरा प्रेजेंट है, इसी प्रकार मेरे प्रेजेंट का फल मेरा फ्यूचर है। तो अगर मैं अपने भविष्य को सुनहरा भविष्य के रूप में देखना चाहती हूं या देखना चाहता हूं, तो अब से हम परमात्मा की आज्ञा अनुसार कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें और श्रेष्ठ कर्मों का खाता अपना बनाएं, ताकि हम खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी हम खुशी बांट सकें, हम खुद दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए। ओके, ओम शांति। अभी हम कर्मों की विधि सिखलाने वाला, कर्मों की गुह्य गति समझाने वाला, कर्मों के ज्ञान का ज्ञाता, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा निराकार शिव, ज्योतिर्मय बिंदु परमात्मा शिव से अपना कनेक्शन जोड़कर उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं और मन ही मन दृढ़ता पूर्वक एक संकल्प लेते हैं कि आज से मैं अपने कर्मों पर ध्यान रखूंगी। आज से हम अपने कर्मों पर ध्यान रखेंगे। चलिए स्वयं को अपने मूल स्वरूप, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित कर दीजिए। स्वयं को बाहरी विचारों से दूर, बाहरी वातावरण से अलग, देहों की दुनिया से दूर, स्वयं को निश्चित कीजिए, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं। इस देह में मस्तक के मध्य भ्रिकुटी में विराजमान हूं। ये देह मेरा कॉस्ट्यूम है, ये देह रूपी वस्त्र अलग, और मैं आत्मा अलग। जैसे ये देह पर पहना हुआ वस्त्र अलग है और देह अलग है, इसी प्रकार मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से न्यारी, फील कीजिए महसूस कीजिए मैं आत्मा, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति बिंदु चमकते हुए सितारे के समान धीरे धीरे मुझे देह से अलग होने का एहसास हो रहा है। मैं स्वयं को एक चमकते हुए सितारे के रूप में देख रही हूं। एकदम शुद्ध पवित्र निर्मल मैं आत्मा उस प्यारे पिता सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान मेरे पिता सर्व के कल्याणकारी है। पतितों को पावन बनाने वाले हैं। सर्व शक्तियों के दाता सर्व गुणों के भंडार है। सर्व प्राप्तियों के स्रोत है। अखुट खजाने के भंडार मैं स्वयं को उस ज्योति बिंदु परमात्मा के सन्मुख अनुभव कर रही हूं। फील कीजिए दिव्य नेत्रों से देखिए उस प्रभु परमात्मा को जिनके सन्निध में आत्मा विराजमान है। उनसे निकलती हुई सर्व शक्तियों की अनंत किरणें धीरे धीरे चारों ओर फैलती जा रही है। चारों ओर शक्ति के वाइब्रेशंस प्रवाहित हो रहे हैं। ये चमकती हुई अनंत किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि किरणें मुझ में समाती जा रही है। फील कीजिए सर्वशक्तिमान से निकलती हुई शक्तियों की अनंत किरणें मेरे भीतर समाती जा रही है। मेरे भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मैं स्वयं को सशक्त महसूस कर रही हूं। कुछ क्षण के लिए स्वयं को इसी स्थिति में स्थित करते हुए अपने मन और बुद्धि में इस अनुभव को समाते हुए हम फिर से लौटते हैं अपने इस शरीर में इस कर्म क्षेत्र पर जहां मुझे इस शरीर के द्वारा अपना कर्म करना है। स्वयं को देखें महसूस करें। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। आप सभी करतल ध्वनि से थैंक्स करेंगे। तो जैसे परमात्मा का दिव्य ज्ञान अभी हमें मिला है कि सोचना भी कर्म है। अब तक हमने सोचा केवल करना ही कर्म है, मुख से अच्छा बोलना ही कर्म है, लेकिन अब क्या पता चला, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो आपका एक एक सोच आपके भाग्य का निर्माण करता है। तो इसलिए हर सोच ध्यानपूर्वक चूज करते हुए, सेलेक्ट करते हुए, जो स्पिरिचुअल है वो हम अपने आप में क्रिएट करें, फिर उसका मंथन करें और फिर जीवन में लेकर आए।